الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله مولانا العظيم. اس وقت پر ہمارے امام صاحب قاری صاحب نے قرآن کی ایسی آیتیں پڑھی کہ ان آیت کو سوچ کر کے میں نے جو کہنے کے لیے سوچا تھا تو میں نے بر وقت اس آیت کی تفسیر آپ کو سنانا طے کیا. اس آیت کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بہت فائدے کی بات عرض کرتا ہوں. بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ ان کے پاس اپنا خود کا مکان نہیں ہے, بھاڑے کے مکان میں رہتے ہیں. بعض لوگوں کے پاس مکان ہے لیکن مکان ان کا چھوٹا ہے, فیملی بڑی ہے اور مکان چھوٹا ہے, تنگ پڑتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ایک عمل بتلاتا ہوں. اگر یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اپنی مالکی کا اونرشپ کا مکان دیں گے, اور جن کا مکان چھوٹا ہے وہ مکان انشاءاللہ اللہ بڑا کر دیں گے. اور یہ جو عمل میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں یہ حدیث پاک میں آیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات ہے, اس لیے پورے یقین کے ساتھ عمل کرو تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. بہت آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی, اس سے پہلے ہم نے وضو کیا ہے. عشاء پڑھیں گے تو جن کو ضرورت ہوگی وہ وضو کریں گے. نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. جو آدمی جان بوجھ کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ اس کی موت کفر پر آوے. یہ بات فضائل اعمال میں حضرت نے لکھی ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کی موت نعوذ باللہ کفر پر آوے. اسی لیے صحیح وضو کرو، دھیان سے وضو کرو کہ ہمارا وضو صحیح ہوئے، پورا ہوئے، وضو کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. تو جب وضو کرتے ہیں تو وضو شروع کرتے وقت پر اتنا پڑھو، بسم اللہ والحمد للہ. کیا پڑھو گے؟ سب پڑھو بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ. یہ کب پڑھو گے؟ وضو شروع کرنے سے پہلے. حدیث میں آتا ہے جس نے اتنا پڑھ کے وضو کیا ہے، بسم اللہ والحمد للہ، تو جتنی دیر تک اس کا وضو رہے گا اتنی دیر تک ایک فرشتہ کنٹینیو لگاتار اس کے لیے ثواب لکھتا رہے گا، نیکی لکھتا رہے گا. اب بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کا وضو اسٹیل کا ہوتا ہے، وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے. دو گھنٹے، تین گھنٹے، پانچ کلاک ان کا وضو رہتا ہے. تو وہ اتنا سا پڑھ لے وضو سے پہلے، بسم اللہ والحمد للہ، تو جتنے دیر تک وضو رہے گا فرشتہ ثواب لکھتا ہی رہے گا، چاہے کوئی عمل نہ کرے، کوئی نیکی نہ کرے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے آپ سب نیت کرو کہ آج سے وضو سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ. وضو شروع کر دیا، اب وضو کے اندر مسواک کی سنت زندہ کرو. گجراتی میں داتن کہتے ہیں، عربی میں مسواک کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لکڑی، وہ منہ کے اوپر گھسنا. آپ لوگ برش کرو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن مسواک وضو کے وقت پر ضرور کرو. بہت بڑی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جو آدمی مسواک کرنے کی عادت بنائے گا تو موت کے وقت پر اللہ اس کو کلیمہ نصیب کریں گے. موت کے وقت پر کلمہ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کریں گے. اس لیے مسواک کی عادت ڈالو، مسواک کی سنت زندہ کرو. اس کو معمولی مت سمجھو، یہ بہت بڑی سنت ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جو آخری عملی سنت ادا کی وہ مسواک کی سنت ہے، آخری عملی سنت. اور اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی حضور کی آخری عملی سنت زندہ کرے گا اللہ اس کو آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب کریں گے. اس لیے مسواک کی عادت ڈالو. کہو آج سے مسواک کی عادت ڈالیں گے، یہ بہت ضروری ہے. جیب میں رکھو مسواک، کر لیا کرو تھوڑی دیر مسواک، پھر وضو کرو. اب آپ وضو شروع کیا، بسم اللہ والحمدللہ پڑھی، مسواک کیا، وضو چل رہا ہے. حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بتلائی. یہاں تو میں نے دو وضو کیے لیکن دیکھا نہیں میں نے، ہو سکتا ہے ہو، میں نے دیکھا نہیں. بہت سی مسجدوں کے اندر وضو خانے میں یہ دعا لکھی ہوئی رہتی ہے کہ وضو کرتے کرتے درمیان میں ایک دعا پڑھو. یہ دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. जो आदमी ये दुआ पढ़ने की आदत डालेगा अल्लाह ताला उसको अपनी ऑनरशिप का मकान दे देंगे, अपनी मालिकी का मकान देंगे। और अगर छोटा मकान होगा अल्लाह बड़ा मकान दे देंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करते हुए आज ईशा ही से वुजू के दरमियान ये दुआ पढ़ने की आदत बनाओ। पढ़ोगे ये दुआ और घर जाके औरतों को भी सिखा दो। वो घर में तो घर वाली रहती है, मकान की जरूरत तो उनके लिए भी ज्यादा है, उनको भी सिखाओ और आप भी ये दुआ पढ़ो। बहुत छोटी सी दुआ है, हदीस की आई हुई दुआ है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा गफिर ली जम्बी वस्ती ली फी दारी व बारिक ली फी रिस्की। देखो कितनी छोटी दुआ है, लेकिन यकीन के साथ वुजू के बीच में या वुजू खत्म होने पर, बाद हदीस में बीच में आया, बाद हदीस में अखीर में आया, वुजू के बीच में पढ़ो, वुजू खत्म करते करते पढ़ो, यकीन के साथ ये दुआ पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शानदार अपना मकान अता करेंगे। तो पढ़ोगे ये दुआ आज से? क्या दुआ पढ़ोगे? मैं आपको याद कराता हूँ, पढ़ो। अल्लाहुम्मा गफिर ली जम्बी वस्सी ली फी दारी वबारिक ली फी रिस्की। और दुआ बड़ी जबरदस्त दुआ है, इसलिए कि आदमी को गुनाह की माफी वुजू के जरिए होती है। हदीस में आता है कि वुजू करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। अब इस हदीस को आम तौर पर शुर्राए हदीस ने गुनाह सगीरा के साथ जोड़ा है कि छोटे गुनाह माफ होते हैं, लेकिन मौत्ता इमाम मालिक की एक शरह में मैंने खुद देखा है, क्योंकि 3-4 साल मैंने मौत्ता भी पढ़ाई है, तो एक शरह में मैंने देखा है कि जो आदमी वुजू के अंदर ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला गुनाह कबीरा भी माफ फरमा देंगे वुजू की बरकत से। वुजू और साथ में ये दुआ, तो इंशाअल्लाह गुनाह कबीरा भी माफ हो जाएंगे। तो वुजू तो बहुत बड़ी चीज है, उससे अल्लाह ताला गुनाह छोटे भी माफ करेंगे, और ये दुआ इस्तिग़फार के शराइत का लिहाज करते हुए पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह गुनाह कबीरा भी माफ हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दीजिए। वस्सी ली फी दारी, ए अल्लाह मेरा घर लार्ज कर दो, एक्स्ट्रा लार्ज, चौड़ा कर दो, बहुत बड़ा कर दो मेरा घर। अब घर बड़ा होगा तो खर्चे भी बड़े होंगे, मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा, बिल भी लाइट का गैस का ज्यादा आएगा। घर बड़ा होगा तो आदमी लोगों को क्या कहता है, भाई आप इंडिया से आए हो, मेरा घर बहुत बड़ा है, एक्स्ट्रा रूम है, रहना हो तो रहो मेरे घर में आकर के। कोई सफीर आ गए मौलाना चंदा करने के लिए, मौल साहब बहुत बड़ा घर है, दिल भी बड़ा है, घर में आके रहो मेरे घर में। अब घर में लोग आएंगे रहेंगे तो खर्चा भी ज्यादा चाहिए, इसीलिए तीसरी दुआ क्या मांगी, वबारिक ली फी रिस्की, ऐ अल्लाह मेरी रोजी में बरकत अता फरमाओ। कितनी जबरदस्त तीन दुआ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के दरमियान अल्लाह ताला से मांगी, और ये तीनों दुआओं की बहुत जरूरत है। अल्लाहुम्मा गफिर ली जम्बी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दीजिए। वस्सी ली फी दारी, ऐ अल्लाह मेरा घर बड़ा कर दीजिए। वबारिक ली फी रिज़्क़ी, ऐ अल्लाह मेरी रोजी में भी बरकत अता फरमाओ। ये दुआ पढ़ने का मामूल बनाओ, इंशाअल्लाह ये तीनों चीजें नसीब हो जाएगी। पढ़ोगे यकीन के साथ, घर में औरतों को भी सिखाओगे تو انشاءاللہ یہ تینوں چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اب گھر ابھی ہے یا نیا بناؤ تو کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا, خیال رکھنا. چونکہ یہاں آنے کے بعد یہ چیز کئی جگہ پر دیکھی, اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی کروں. مکان بنانے میں مسلمان آزاد نہیں ہے کہ جیسا چاہے ایسا گھر بنا دے. مکان میں پہلی چیز یہ دھیان رکھو کہ ہماری مستورات کے لیے پردے کا لحاظ ہوگے. بہت سے لوگ آج کل جو ایک نئی سٹائل میں مکان بناتے ہیں تو سیٹنگ روم اور کچن دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. کوئی سیٹنگ روم میں بیٹھا ہے تو عورتوں پر نظر پڑتی رہتی ہے. اس لیے مکان کا سسٹم ایسا بناؤ, ایسی ترتیب بناؤ کہ مکان میں کوئی باہر کا آدمی آوے, دروازے پر آوے, سیٹنگ روم میں بیٹھا ہو تو گھر کی مستورات کے اوپر نظر نہ پڑے. یہ پہلی ضروری چیز ہے مکان کے بارے میں. دوسری بات میں آپ کو بتلاؤں مکان کے متعلق, ہاؤسنگ سسٹم کیسی ہونی چاہیے, اس کے اسلامک رولز, اسلامک پرنسپلز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دوسرا یہ ہونا چاہیے مکان میں کہ ٹوائلٹ جو بناتے ہیں, استنجا خانہ بناتے ہیں, تو وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے, قبلے کی سائیڈ میں نہیں ہونا چاہیے. ہم اسی سفر میں ایک عالیشان بنگلے میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے تو استنجے کے لیے جانے کا تقاضا ہوا. میں نے کہا یہ میرے لیے جو بیڈ روم تھا وہاں بھی قبلے کی طرف. میں باہر نکل کر کے دوسرے ساتھیوں کے روم میں گیا, وہ بھی قبلے کی طرف. تیسرے ٹوائلٹ میں گیا, وہ بھی قبلے کی طرف. میں نے کہا اللہ کی پناہ, تمہارے گھر میں ہم پیشاب بھی کیسے کریں؟ سارے ٹوائلٹ قبلے کی طرف بنے ہوئے ہیں. اور ہماری شریعت میں یہ چیز غلط ہے کہ قبلے کی طرف لوگ ٹوائلٹ بناوے. اس لیے اس کا دھیان کرو. آج ہی رات کو اپنے گھر کے ٹوائلٹ چیک کرو, اگر قبلے کی طرف ہے تو خرچہ کر کے اس کو پہلی فرصت میں قبلے کی سائٹ پر سے ہٹاؤ, اس کو پھراؤ قبلے کی سائٹ سے. یہ دوسرا اسلامی اصول ہے کہ ہمارے گھروں کے ٹوائلٹ, استنجا خانے, یہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا ضابطہ میں آپ کو بتلاؤں استنجے خانے کے مکان کے بارے میں, چھوٹا مکان ہو کہ بڑا مکان ہو, کوئی بھی مکان ہو, مکان میں ایک روم یا ایک کارنر ایسی ہونی چاہیے جو پریئر اور عبادت کے واسطے ہو. ہم جب مکان بناتے ہیں تو بیڈ روم, سیٹنگ روم, سٹور روم, ڈرائنگ روم, کچن روم, اللہ جانے کیسے کیسے روم بناتے ہیں. لیکن مسلمان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر میں پریئر روم بناوے, عبادت کا روم. اور اسی عبادت کے روم کو پرانے زمانے میں مسجد البیت کہتے تھے, گھر کی مسجد کہا جاتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا مکان, بڑا مکان دیا تو ایک روم الگ کر دو عبادت کے لیے, ورنہ کم سے کم ایک کارنر بنا لو, وہاں مصلی رہے, قرآن شریف رہے, فضائل اعمال رہے, تسبیح رہے, تاکہ وہاں بیٹھ کر کے گھر کی مستورات سب اسی جگہ نماز پڑھے. مرد بیمار ہوئے اور مسجد نہیں گیا اور کبھی دیر سے آنکھ کھلی مسجد نہیں گیا, اسی جگہ نماز پڑھے. رمضان میں عورتیں اعتکاف کرے, اسی جگہ پر اعتکاف کرے. اس کو مسجد البیت کہا جاتا ہے, گھر کی مسجد کہا جاتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, کئی جگہ پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایت لائے الگ الگ عنوان سے استدلال کرنے کے لیے, ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، حضور آپ میرے گھر کے اوپر تشریف لائیے اور میرے گھر میں نماز پڑھ دیجئے، جس جگہ آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں گے میں اس جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کے لیے متعین اور فکس کر دوں گا، مجھے گھر کے اندر نماز کے لیے ایک جگہ فکس کرنی ہے، تو آپ میرے گھر پر تشریف لائیے نماز پڑھ دیجئے، وہ جگہ میرے لیے نماز کی فکس ہو جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح ان کے گھر پر پہنچ گئے اور گھر پر جا کر کے حضور نے دو رکعت نماز ادا فرمائی، پھر وہ صحابی نے وہ جگہ اپنے گھر کی عبادت اور نماز کے لیے فکس کر دی کہ یہاں پر جو ہے یہ نماز کی جگہ ہے۔ تو یہ سسٹم اپنے گھر میں بناؤ کہ ایک جگہ، ایک روم، ایک کارنر پریئر اور عبادت کے لیے ریزرو ہونا چاہیے، خاص ہونی چاہیے کہ یہاں پر ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کنیکٹڈ بات ایک دوسری بھی ہے، آپ اپنے مکان کے اندر قبلہ ایپ لگا کر کے قبلہ کس طرف ہے وہ چیک کرو۔ پہلے تو کمپاس آتے تھے جس کے ذریعے قبلہ چیک کرتے تھے، اب تو موبائل کے اندر بہت ساری ایپ آ گئی جس کے ذریعے سے آپ گھر میں قبلہ چیک کر سکتے ہو اور قبلے کی جہت نکال سکتے ہو۔ تو اپنے اپنے گھروں میں قبلہ کس طرف ہے وہ چیک کرو اور وہاں کوئی اسٹیکر لگا دو یا کلر لگا دو، لکھ دو کہ ہمارے گھر میں قبلہ اس سائٹ پر ہے، یہ بھی متعین کر لینا گھر میں بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے گھر میں بیڈ اور پلنگ ایسی سسٹم پر ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں، سوتے وقت پر پیر کعبہ کی طرف ہوتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے گھروں میں قبلہ کس سائٹ پر آتا ہے وہ بھی فکس کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کو موبائل سے چیک کرنا نہیں آتا تو جن لوگوں کو چیک کرنا آتا ہے ان کو گھر پر ایک دن بلا لو، چائے ناشتے کی دعوت دے دو اور ان کو کہو بھائی گھر میں آ کر یہ قبلہ چیک کر کے نشان بنا دو، میں وہاں پر اسٹیکر لگا دوں، کلر لگا دوں کہ فکس ہو جائے کہ اس سائٹ میں ہمارے گھر کے اندر قبلہ ہے۔ یہ سب ضروری ہے ہمارے گھروں کے اندر کرنا، ایسے مکان کو اسلامی سسٹم کے مکان کہے جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں، بہت سے مکانوں کے اندر لوگوں کو شوق ہوتا ہے قرآن کی آیت والے، وہ لوگ فریمنگ کیے ہوئے تگرے لگاتے ہیں، قرآن کی آیت، آیت الکرسی، قل ہو اللہ شریف وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں، کعبہ، مسجد نبوی شریف، یہ سب لگاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر فریمنگ کر کے، اب بیڈ روم میں بھی لگائیں گے۔ حالانکہ بیڈ روم کے اندر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بہت سی مرتبہ کھلے ہوئے ستر میں ہوتا ہے، ستر کھلا ہوا ہوتا ہے، اب وہ احتیاط نہیں کرتا کہ یہاں قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے وہاں قرآن شریف بھی کھلا رکھا ہوا ہو اور وہیں پر ستر کھول کر کے آدمی رہتا ہو، تو اس سے وہ جو لگا ہوا ہے قرآن کی آیت، قرآن کی سورت، قرآن مجید، اس کی بڑی بے ادبی ہوتی ہے، بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایسی کوئی چیز لگانا ہو کانچ کی فریم میں پورے ادب کے ساتھ، تو ایسے روم میں لگاؤ جس روم کے اندر بے ادبی نہ ہوتی ہو، اس کی طرف پیر نہیں ہوتے ہو۔ بعض لوگ اتنے ہوشیار ہیں، اتنے نادان ہیں، اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ یہاں ٹیلی ویژن ہے اور اسی کے اوپر آیت الکرسی کا جو ہے بورڈ لگا ہوا ہے، اب یہاں ٹیلی ویژن پر فلم چلے گی، میوزک چلے گا، और उसके ऊपर कुरान रखा हुआ है, आयतुल कुर्सी कुल अल्लाह रखी हुई है। आप अंदाजा लगाओ ये कुरान मजीद की कितनी बड़ी बेअदबी, कितनी बड़ी बेहुरमती है। अब आपके हाथ में फैसला है कि घर से टीवी निकालो कि कुरान की आयत निकालो, फैसला आपको करना है। एक ईमान वाले के ईमान का तकाजा ये है कि वो अपने घर से फिल्म म्यूजिक की चीजों को निकाल करके हटा देगा और कुरान की बरकत को अपने मकान में बाकी रखेगा। ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, हम लोग ध्यान नहीं देते ऐसी चीजों के ऊपर। और अगर हो सके तो एक काम अपने मकान में और भी करो कि घर के अंदर जो अपने इंडियन स्टाइल के नीचे वाले जो टॉयलेट होते हैं वो भी घरों में बनवाओ। अब ये पता नहीं कैसा जमाना आ गया कि मकान में एक जगह देखा 15 टॉयलेट है, इतना बड़ा बंगला, लेकिन एक भी जो है वो नीची स्टाइल का नहीं। हालांकि असल तरीका जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सहाबा का था, वो नीचे बैठ करके इस्तिंजा करने का था, ये असल तरीका था। और ये कोई मजबूरी में ये ऊपर वाला इस्तेमाल करे वो अलग बात है, लेकिन हर मकान में ये भी होना चाहिए। आपके पड़ोस में एक मुल्क है मलावी, वहां एक हमारे दोस्त है आर्किटेक्ट, बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्ट है, कभी इंग्लैंड में मस्जिद बनाते हैं, कभी जाम्बिया में, कभी जो है अफ्रीका में भी इनकी साइट चलते, इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्ट। उन्होंने मुझे सुनाया कि हमको जो मैंने जब कॉलेज पढ़ी आर्किटेक्ट जब मैं पढ़ता था तो हम लोगों को कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये सिखाया गया कि नीचे वाला जो टॉयलेट है उसमें बैठ करके आदमी इस्तिंजा करता है तो उस आदमी के पेट की सफाई बराबर होती है और उस आदमी को पेट की लाइन की बीमारियां नहीं हुआ करती। का हमको आर्किटेक्ट के कोर्स में ये बात सिखाई गई। इसलिए घरों के अंदर अगर हो सके तो असल जो हमारी इस्लामिक सिस्टम है, जो असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका है, उस स्टाइल से नीचे वाला इस्तिंजा खाना भी बनाओ, जरूरत के लिए ऊंचा भी बनाओ बीमारों के वास्ते, और घर में वुजू का भी इंतजाम होना चाहिए। अब तो वुजू करना वो भी एक टेंशन कि पैर ऊंचे करो वॉश बेसिन में और वहां पर वुजू करो, ये कौन सा तरीका हुआ। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू का जो तरीका मनकुल है उसमें ये है कि किबले की तरफ बैठ करके वुजू करो, अभी खड़े खड़े वुजू, पैर भी ऊंचे करके धोने के, ये कौन सा तरीका है। भाई अल्लाह ताला आपको देवे तो ये सब चीजें अपने मकान के अंदर लिहाज करो, इसकी रियायत करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला आपको शानदार मकान अता फरमाए और मकान में ये इस्लामी उसूल और रूल्स को फॉलो करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमने तो अपने बुजुर्गों को भी देखा, बहुत से बुजुर्गों को हमने देखा, हमारे हजरत शेखुल मशाइख मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातहुम का डाभेल में जब मकान बन गया, सब तैयार हो गया, तो मकान में रहने के लिए जाते ही नहीं। मैंने कहा कि हजरत नए मकान में तशरीफ ले जाए, सब इंतजार कर रहे पुराना मदरसे के मकान से। तो मुझे फरमाया कि जब तक हजरत कारी अमीर हसन साहब तशरीफ लाकर मेरे घर में दो रकात नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां तक मैं रहने के लिए जाऊंगा नहीं। जब ये बात कही तो फिर मैं फौरन एक्टिव हुआ। हजरत कारी अमीर हसन साहब बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, औलिया किराम में से थे, साउथ अफ्रीका ही आए हुए थे। मैंने हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब पांडोर दामत बरकात उनको फोन किया कि बम्बे एयरपोर्ट से उतर करके डाभेल की कुछ शक्ल बना दो कि हजरत डाभेल तशरीफ ले आवे और दो रकात नमाज पढ़ ले, इस बहाने तलबा का भी फायदा हो जाएगा मैं भी अपने घर ले जाऊंगा और फायदा हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये अल्लाह के वली इतने बड़े बुजुर्ग हजरत शेख मुफ्ती अहमद साहब जैसे आदमी, उनका मकान ये खुद मैं मेरे साथ वाकिया पे। हजरत ने कहा कारी अमीर हसन साहब तशरीफ लावे, दो रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर मैं घर में रहूंगा। तो फिर हजरत आए और दो रकात नमाज पढ़ी, बाद में हजरत ने मकान में रहना शुरू किया। अल्लाह ताला ने मुझे जब घर बनवा दिया बारडोली, तो मैं सफर में था। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातहुमुल आलिया एक सफर में बारडोली पहुंचे थे। मैंने फोन के जरिए हजरत को दरख्वास्त की, मैं कहीं फॉरेन में ही था, मैंने कहा हजरत घर पे तशरीफ ले जाकर सिर्फ दो रकात नमाज घर में पढ़ दो ताकि हम लोग रहना शुरू कर दे रहे। तो हजरत ने मंजूर फरमा लिया और सफर के दौरान घर जाके दो रकात नमाज अदा फरमाई। तो ये है तरीका कि घर के अंदर कोई अल्लाह का नेक बंदा आवे, दो रकात नमाज पढ़े, घर की मस्जिद हम बनावे, ये सब चीजें होनी चाहिए। आजकल हमारे घरों में ये सब चीज होती नहीं। फिर हम क्या कहते हैं कि घर के अंदर बाहर के असरात बहुत है, घर में सुकून चैन नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत है, बेचैनी रहती है। भाइयों, घर के अंदर हमने रहमत लाने वाली चीजें, बरकत लाने वाली चीजें, नूर लाने वाली चीजें, कोई ऐसा काम हमने नहीं किया, फिर ऐसे मकान में बेचैनी रहती है, घबराहट रहता है, घर में सुकून नहीं रहता। इसलिए ये ऐसे काम करो जो मैं आपको बतला रहा हूं, तो इंशाल्लाह घरों में सुकून आएगा, चैन आएगा, रहमतें आएगी, बरकतें आएगी। घरों में औरतें नमाज पढ़ती हो, मर्द भी सुन्नत तहज्जुद पढ़ते हो, कुरान की तिलावत होती हो, जिक्र होता हो, ये सब चीजें मकान में होती हो, अल्लाह के नेक बंदे उलमा हुफाज़े किराम ये आवे, तो फिर घरों में रहमत और बरकत आएगी। ये सब होना चाहिए हमारे घरों में। आजकल हमारी मेंटालिटी बिगड़ रही है, बदल रही है। हम घरों में बहुत खर्चे करेंगे लेकिन जो करने के काम है वो हम लोग करते नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये चंद जरूरी बातें सुना दी। अल्लाह ताला हमारे घरों में रहमत और बरकत नाजिल फरमाए, खैर नाजिल फरमाए, घरों में सुकून चैन आफियत अता फरमाए और घरों की नहूसतों से अल्लाह ताला मुकम्मल हिफाजत फरमाए। बात निकली है तो एक बात और सुना दो। ये जो तस्वीर होती है, फोटो इंसान का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, ये जो तस्वीर होती है, जिस घर के अंदर किसी जान वाली चीज की तस्वीर होगी उस घर में रहमत के फरिश्ते आते नहीं। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का वादा वक्त तय किया कि इस वक्त पर मैं मिलने के लिए आऊंगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में बैठे रहे कि जिब्राइल आए, जिब्राइल आए, जिब्राइल आए, जिब्राइल आए ही नहीं कि भाई आज जिब्राइल ने लेट कर दिया, क्यों नहीं आए जिब्राइल। इंतजार करने के बाद जब जिब्राइल नहीं आए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो महल्ले में स्ट्रीट में हजरत जिब्राइल की मुलाकात हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल प्रॉमिस करते हो, टाइम फिक्स करते हो और आते नहीं हो वक्त के ऊपर। तो जिब्राइल अमीन ने क्या कहा, ए अल्लाह के रसूल, में आया था लेकिन मैं घर में दाखिल नहीं हुआ, इसलिए कि आपके घर के अंदर एक कुत्ते का बच्चा मौजूद था और जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में हम लोग दाखिल होते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। हुजूर को पता भी नहीं था कि मेरे घर में कुत्ता है। वो कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा, उर्दू में पिल्ला कहते हैं, गुजराती में कुड़कुड़ियू कहते हैं, तो छोटा सा कुत्ते का बच्चा कहीं से घुसकर पलंग के नीचे बैठ गया था, हुजूर को भी पता नहीं। हुजूर को भी मालूम नहीं कि कुत्ते का बच्चा घुस गया है, लेकिन जिब्राइल तो फरिश्ते हैं, वो घर में नहीं आए। तो जब एक कुत्ते का बच्चा घर के अंदर हो और उसकी वजह से फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ना आवे, तो अगर हदीस में दूसरी जगह मौजूद है जहां जानदार की तस्वीर होती है, फोटो होती है, वहां रहमत के फरिश्ते आते। इसीलिए घरों के अंदर से तस्वीरें निकालो, अगर जैसे हमारे फोटो होते आईडी के फोटो होते उसको बंद करके रखो, न्यूज़पेपर आवे तो उसको भी ऐसे फोल्ड करो कि फोटो ऊपर न रहे, इस तरह रखो। और कोई चीज खरीद के लाओ तो बॉक्स के ऊपर तस्वीर होती है, फोटो होते है, तो छुरी के जरिए पहले तस्वीर मिटाओ फिर घर के अंदर रखो, ये आदत बनाओ। अब तो दुनिया में तस्वीर इतनी आम हो गई कि आप टूथपेस्ट लाएंगे उसके ऊपर भी हस्ती सफेद चमकदार दांतों की तस्वीर होगी। हम अपने घर के अंदर रहमत को रोकने वाली चीजें पैसे दे करके खरीद के ला रहे और हमें एहसास भी नहीं है। कोई भी चीज लाओ, बॉक्स लाओ या एक कोई कपड़ा लाओ, पहले देखो कि उसके ऊपर तस्वीर नहीं हो तो मिटा दो, उसको साफ कर दो। ये बहुत जरूरी है, यहां तक कि अपने पहनने के कपड़ों के ऊपर भी तस्वीर ना होए, जान वाली चीजों की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, उसका ख्याल रखो। आजकल मुसलमान ऐसे टी शर्ट पहनते हैं कि उसके ऊपर एनिमल्स और बर्ड्स के फोटो बने होते हैं, ये गुनाह है, गलत काम है, शरीयत में नाजायज है, सुन लीजिए इसको। और किड्स बच्चों के, किड्स वेयर जो होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, उसके ऊपर भी लोग तस्वीर वाले कपड़े ले आते हैं और ध्यान नहीं रखते। एक मर्तबा जब पहले नवासी की पैदाइश हुई तो घर में से अहलिया, हमारे सूरत में एक मशहूर मार्केट है कपड़ों की, छोटा बाजार, वहां गई कि भाई छोटी नवासी के लिए कपड़े ले आवे। आकर के मुझे बताया, मैं हर पीर को जाता हूँ, सूरत में मजलिस होती है, 16 साल 17 साल हो गए तो साथ में ले गया, गए तो तेरे कपड़े लेना, मैं अपनी मजलिस कर लेता हूँ। वो आकर के मुझे रात को कहती है कि मुसलमानों की कपड़े की 11 दुकान पर मैं गई, लेकिन एक दुकान पर भी बच्चों के कपड़े बगैर तस्वीर के मुझे नहीं मिले। तो मैं थक गई कि भाई ये तो क्या होगा, कपड़े जहां भी जाओ तस्वीर वाले, जानवर वाले। तो कहा मैंने नहीं खरीदे। अखीर में नाउम्मीद होकर के एक हिंदू की दुकान पर गई, तो उस हिंदू ने यूं कहा कि ये मार्केट में चलते नहीं है इसीलिए हम लोग रखते नहीं है, लेकिन एक मर्तबा हमने लोड मंगवाया था तो है हमारे पास ऊपर रखे हुए, आप कुछ दूसरा काम करके आओ, हम आधे घंटे में वो पैकिंग खुलवा के रखते हैं। तो एक हिंदू के यहां से एक्सपायर डेट माल के अंदर वो बगैर तस्वीर के कपड़े मिले, वो खरीद करके लाई, वरना 11 मुसलमान की दुकान पर जाकर के वो वापिस आई। ये हाल है इस वक्त के ऊपर। तो बच्चों के कपड़े में भी ध्यान रखो कि तस्वीर ना आवे, फोटो ना आवे, इसका खास ख्याल और लिहाज रखना चाहिए। ये इस्लामी बहुत जरूरी और अहम बात। हम घरों में देखते हैं बच्चों के टॉयज को, खिलौने, ये जो टॉयज होते उसमें कोई पैरट होगा तो कोई स्पैरो होगी, कोई चिड़िया, कोई तोता, ऐसे खिलौने टॉयज, डॉग होगा, कैट होगी, ऐसे ऐसे टॉयज बच्चों को खेलने के लिए ला करके देते, नहीं देना चाहिए। दूसरे टॉयज ला करके दो जिसके अंदर कोई तस्वीर न हो, उसका खास ख्याल करना चाहिए। एक बात मैं आपको अजीब बतलाऊं, जब मैं मुफ्ती क्लास में गया तो मुफ्ती क्लास में दो चीजें होती है, एक इस्लामिक फतावा के रूल्स पढ़ने होते हैं और दूसरा फतावा की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि लॉयर लोग रूल्स पढ़ते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो मुफ्ती क्लास में भी ऐसा करना पड़ता है। जब मैं मुफ्ती बनने गया, आलिम बनने के बाद, तो पहला क्वेश्चन, सवाल, फतवा मेरे पास जो प्रैक्टिस फतवे के लिए आया उसमें किसी मुसलमान ने हमारे दारुल इफ्ता में सवाल किया था कि हमारा बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल के अंदर ड्राइंग का एक पीरियड होता है, एक सब्जेक्ट होता है और उसमें एनिमल्स की ड्राइंग करनी होती है, तो ये जायज है कि नाजायज है? ये सवाल पहला मेरे पास प्रैक्टिस फतवा के अंदर आया था। तो मैंने फतवा की पुरानी नई बड़ी बड़ी किताबों को लिख करके फिर उसका जवाब तैयार किया, फिर जवाब तैयार करके सीनियर मुफ्ती साहब को चेक कराना होता है, फिर उनकी फाइनल सिग्नेचर होती है। तो मैं मेहनत करके पूरा फतवा मैंने रेडी किया कुरान हदीस की रोशनी में, फिर हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब को सुबह में चेक कराने के लिए गया। मैंने जवाब पूरा ये लिखा था कि स्कूल में ड्राइंग का जो पीरियड आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर भी एनिमल्स और बर्ड्स जानदार उसकी तस्वीर बनाना मुसलमान बच्चों के लिए नाजायज और हराम है, गुनाह का काम है। तो हजरत बहुत खुश हुए और फौरन सिग्नेचर कर दी कि बहुत सही फतवा तुमने लिखा, अब मैं सिग्नेचर कर देता हूं, अब पास ये फतवा, आप आगे इसको भेज दो सवाल करने वाले के पास। इससे आप ये मसला भी समझ लीजिए कि लोग खामोखा ड्राइंग के नाम के ऊपर एनिमल्स बर्ड्स वगैरह की तस्वीरें बना और उसको कोई नाजायज भी नहीं समझता है, ये आजकल हम लोगों का हाल हो चुका है। इसीलिए तस्वीरों से अपने मकान को बचाओ तो इंशाल्लाह घरों के अंदर रहमतें नाजिल होगी, बरकतें आएगी और घरों के अंदर इंशाल्लाह सुकून चैन आपको जिंदगी के अंदर मिलेगा। अल्लाह ताला इन हिदायत पर हम सब मुसलमानों को अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। ये है इस्लामी हाउस के मुतालिक कुछ जरूरी बातें मैंने आपको बतला दी। असल तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वुजू करते करते दरमियान में दुआ पढ़ेंगे, क्या दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा गफिर ली जम्बी वस्ती ली फी दारी व बारिक ली फी रिस्की। जो आदमी यकीन के साथ वुजू के दरमियान ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको अपनी मालिकी का मकान अता फरमाएंगे, और छोटा मकान होगा तो अल्लाह ताला उसको बड़ा बना देंगे, रोजी में बरकत देंगे और इंशाल्लाह उसके गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देंगे। जी तो चाहता है इसी मजमून को आगे चलाऊं, लेकिन हमारे अजीज मोहतरम की पढ़ी हुई आयत की तफसीर का वादा कर ही लिया था, इसीलिए चंद बातें इसके मुतालिक में अर्ज कर देता हूं। कुरान की आयत है, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून। कुरान में दो जगह पर याजूज माजूज का अल्लाह ताला ने तस्किरा फरमाया, एक सूरतुल कहफ के अंदर। सूरतुल कहफ में एक बहुत बड़े मुसलमान बादशाह का किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया, खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, और इसलिए बयान किया कि जब मेरे और आपके प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो मक्का वालों ने हुजूर नबी है कि नहीं है उसका एग्जाम लिया, परीक्षा ली। अब वो मक्का वाले तो जाहिल जट कौम थी, उनको क्या आवे, वो तो उम्मी लोग थे, अनपढ़ लोग थे, अनएजुकेटेड लोग थे, उनको तो कुछ आता नहीं, और वो एग्जाम कैसे ले रहे। एग्जाम के लिए एग्जामिनर वो एजुकेटेड होना चाहिए, जो अनएजुकेटेड हो वो कैसे एग्जामिनर बने। तो उस हवाले से बाज मरतबा में वहां इंडिया में, यहां नहीं कह रहा हूं, इंडिया में मुतवल्लियों में ट्रस्टियों में बयान करने जाता हूं, मेरे इसे वीडियो बहुत वायरल हुए, शायद यहां भी आए होंगे कि मैं मुतवल्लियों के कैंप करता हूं, बयान करता हूं। तो मैं मुतवल्लियों को एक बात कहा करता हूं कि आप लोग कैसे इमाम साहब का इंटरव्यू लेते हो, કે કોઈ ઇમામ સાહેબ આવે તો કે મોલ સાહેબ ઇન્ટરવ્યુ આપવા આવજો, નમાઝ પઢાવો, અમે સાંભળીએ, પછી જોઈએ કે તમને ઇમામતમાં રાખે કે નહીં રાખે. તમે હું મુતવલ્લી હો કહેતા હું, તુમ પહેલે અપની અલહમદો મુજે સુનાવ, તુમ્હારી અલહમદો સહી હૈ કે નહીં, તુમ ક્યાં ઇન્ટરવ્યુ લેંગે, તુમ્હારા કુરાન ઠીક નહીં હૈ, તુમ્હારી શીન શીન મેં ફરક કરકે દિખાઓ, તુમ અપની અત્તહિયાત મુજે પહેલે સુનાવ, તુમ ક્યાં ઇન્ટરવ્યુ લેગો ઇમામ કા. ઓર મેં તો ઇન્ટરવ્યુ વાલી નમાઝ પઢને કા કાયલ હી નહીં હું, ચૂંકિ ઇન્ટરવ્યુ મેં નમાઝ મેં રિયાકારી હોતી હૈ, દિખલાવા હી હોતા હૈ, એસી નમાઝ તો ન પઢના બહેતર હૈ, કોઈ ઓર મસ્જિદ મેં જાકે પઢ લેની ચાહીએ. ઇમામ સાહેબ કા કુરાન સહી હૈ કે નહીં હૈ વો કિસી કારી સાહેબ કે પાસ ભેજ દો, કે ઇનકો હમ ઇમામતને રખના ચાહતે હૈ, આપ ઇનકા કુરાન સુન કે ચિઠ્ઠી લિખ દો યા ફોન પર હમકો કહે દો કે ઇનકા કુરાન સહી હૈ નહીં હૈ. હમ તો જાહિલ લોગ હૈ, હમે ખુદ નહીં આતા, હમ કા ઇન્ટરવ્યુ લેને બેઠેંગે. ખેર વો એક દૂસરા સબ્જેક્ટ હૈ. તો મેં તો યે કહે રહા થા કે એક્ઝામિનર એક્ઝામ લેને મેં એક્સપર્ટ હોના ચાહીએ. અબ યે મક્કા વાલે જાહિલ જટ કોમ ઉનકો ક્યા આવે એક્ઝામ લેના, તો ઉન્હોને મદીના કે જુઈસ લોગો કો યહૂદીઓ કા કોન્ટેક્ટ કિયા, ચૂંકિ યહૂદી લોગ યે તૌરા કિતાબ કે આલિમ લોગ થે, બડે આલિમ થે, કા ઉનકે પાસ કોઈ એક્ઝામ કા પેપર નિકલવા કે મંગવાઓ, વો કુછ સવાલ સિખાવે. તો મદીના કે યહૂદીઓને તીન સવાલ સિખલાયે થે, ઉસમે એક સવાલ સિખાયા થા કે મોહમ્મદ ઇબ્ને અબ્દુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કો સવાલ કરો કે વો ઝુલકરનૈન બાદશાહ કોનસા થા. તો યે હુઝૂર કે એક્ઝામ કે લિયે યહૂદીઓને મક્કા કે કાફિરો કો સવાલ સિખાયા થા, તો કાફિર લોગો ને આકર હુઝૂર કો સવાલ કિયા, તો અલ્લાહ તઆલા ને ઉસકો કુરાન મેં નકલ કિયા, વયસઅલૂનકા અન ઝુલકરનૈન, યે લોગ આપસે ઝુલકરનૈન કે બારે મેં સવાલ કરતે હૈ, તો અલ્લાહ તઆલા ને જવાબ દિયા, પૂરી ઇસકી સ્ટોરી સુનાઈ અલ્લાહ તઆલા ને. મેં ભી સુના સકતા હું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, લેકિન આપને કહા હૈ કે 8 બજે અઝાન હૈ, ઉસસે પહેલે ખતમ કર દેના હૈ. મેં ઇન્શાઅલ્લાહ એક મિનિટ ઉપર જાને નહીં દુંગા, પાવર બ્રેક રખતા હું મેં બયાન કે અંદર. 5 મિનિટ મુજે લોગ દેતે હૈ તો 4 મિનિટ 59 સેકન્ડ મેં બયાન ખતમ કરને પર કાદિર હું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એસા ભી મેં મુકર્રર હું. ઓર લોગ ઇજાઝત દેતે તો 3 ઘંટે તક ભી બયાન કરતા હું. ખૈર તો પૂરી બાત તો ઇસ વક્ત સુના નહીં સકતા, ઇતની બાત અર્જ કરતા હું કે જબ ઝુલકરનૈન કા વાકિયા નાઝિલ હુઆ તો ઉસમે યે બાત હૈ ઝુલકરનૈન વાલે વાકિયે મેં, કે ઝુલકરનૈન એક ઇલાકે મેં ગયે દુનિયા કે, વહાં લોગો ને શિકાયત થી, ફરિયાદ કી, ઇન્ન યાજૂજ વ માજૂજ, કે ઝુલકરનૈન એ યાજૂજ માજૂજ બહુત બડી ટેરરિસ્ટ કોમ હૈ, ઇન્ન યાજૂજ વ માજૂજ મુફસિદૂન ફિલ અર્થ, યે ટેરરિસ્ટ લોગ હૈ, ફસાદી લોગ હૈ, ફિતિન લોગ હૈ, હમારી યહાં આકે લૂટ માર કરકે ભાગ જાતે, આપ કુછ રોકો ઇન ટેરરિસ્ટો કો હમારી યહાં આને સે, આતંકવાદીઓ કો ફિતિનો કો હમારી યહાં આને સે રોકો. તો હઝરત ઝુલકરનૈન કહેને લગે, અચ્છા મેં એક દીવાર બના દેતા હું. તો હઝરત ઝુલકરનૈન એક પ્રોટેક્શન વોલ બના દી, ઓર એસી પ્રોટેક્શન વોલ બના દી કે ફિર યાજૂજ માજૂજ કા આના બંધ હો ગયા, ઓર વો દીવાર કે પીછે યાજૂજ માજૂજ કી કોમ કો બંધ કર દિયા ગયા. લેકિન યે યાજૂજ માજૂજ કી કોમ કયામત સે પહેલે પહેલે દુનિયા કે અંદર એક લાસ્ટ એટેક કરેગી, જબરદસ્ત એટેક ઓર હમલા કરેગી, ઉસકો અલ્લાહ ને યહાં બયાન ફરમાયા, હત્તા ઇઝા ફુતિહત યાજૂજ વ માજૂજ વહુમ મિન કુલ્લી હદબિન યનસિલૂન. કયામત જબ કરીબ આયેગી, ઓર અબ એસા અંદાઝા હૈ કે કયામત બિલકુલ નઝદીક હૈ, કોઈ જ્યાદા દૂર નહીં હૈ, સબ યાજૂજ માજૂજ એક જબરદસ્ત એટેક કરેંગે, જબરદસ્ત હમલા કરેંગે દુનિયા કે ઉપર, ઓર પૂરી દુનિયા મેં જો કુછ હૈ વો ખાપી જાયેંગે, સબ ખાપી કે સાફ કર ડાલેંગે. યે લોગ નિકલેંગે पैलेस्टाइन के अंदर एक जगह है, उस इलाके से ये लोग, उस तरफ से ये लोग निकल करके आएंगे। कोई फिक्स जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन हदीस में यूं आता है कि याजूज माजूज जब निकल के आएंगे तो एक छोटा सा समंदर है जिसका नाम है बुहैरा तबरिया। आपने फजाइले आमाल की तालीम अगर ध्यान से सुनी हो तो हजरत कई हदीसें नकल करते हैं कि इमाम तबरानी ने ये हदीस नकल की, मौजब कबीर तबरानी की रिवायत है, औसत तबरानी की ये रिवायत है। फजाइले आमाल में 500 जगह पर उसके रेफरेंस से हजरत ने ये हदीसें नकल की है। तो ये तबरानी, इमाम तबरानी बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे। वो जिस एरिया के थे वहाँ एक बहुत बड़ा जो है सरोवर है, गुजराती में सरोवर कहते हैं और जो है उर्दू में झील कहा जाता है और इंग्लिश में लेक कहा जाता है। बहुत बड़ा लेक है, उसका नाम है लेक ऑफ तबरिया, बुहैरा तबरिया अरबी में कहते हैं। हदीस में आता है कि याजूज माजूज जब निकलेंगे तो बुहैरा तबरिया के पास से गुजरेंगे तो पूरे दरिया का पानी पी जाएंगे और ऐसा पी जाएंगे कि कीचड़ भी चाट जाएंगे। और वो इतनी बड़ी कौम होगी कि उनके आगे वाले लोग, वो तो लंबा लश्कर होगा याजूज माजूज का, और कितना बड़ा लश्कर होगा आपको बताऊं, दुनिया में इंसानों का जितना पॉपुलेशन है, हम इंसानों का जितना पॉपुलेशन है उससे 10 times ज्यादा उनका पॉपुलेशन है, इंसानों से 10 times ज्यादा उनका पॉपुलेशन है याजूज माजूज कौम का। वो भी इंसान है, हजरत नूह अलैहि सलाम की औलाद में से। तो वो लोग बुहैरा तबरिया पर आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, बाद वाले आएंगे उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो कीचड़ चाट जाएंगे। तो बाद वाले आएंगे और पीछे वाले, वो कहेंगे कि यहाँ तो सब सूखा है, कभी पानी था के नहीं था। वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी वो खाउधर कौम होगी, खाने पीने वाली याजूज माजूज कौम। मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बुहैरा तबरिया देखने के लिए कि भाई हदीस में इसका तस्केरा आया है, उसको देखना चाहिए। जोहर असर दो नमाज भी मैंने उसके किनारे पर बैठ के वहां किनारे पर पढ़ी है। तो वो बुहैरा तबरिया, वहां से याजूज माजूज कौम गुजरेगी और पूरी दुनिया में फसाद मचाएगी, सब चीजें खा पी जाएंगे और इतना खाना पीना खत्म हो जाएगा और मेंगवारी इतनी ज्यादा हो जाएगी। अभी मेंगवारी से डर रहे हो, सुनो मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, दुनिया में मेंगवारी कितनी बढ़ने वाली है। हदीस में आता है कि याजूज माजूज का जब जमाना आएगा मेंगवारी इतनी बढ़ जाएगी कि एक गाय की मूंडी लेने जाओगे, मूंडी गोश्त में मूंडी सस्ती होती है, मूंडी का भाव कम होता है गोश्त के मुकाबले में, का एक मूंडी गाय की बैल की खरीदने जाओगे हदीस में तो 100 सोने के कॉइन देने पड़ेंगे, 100 gold coin, 100 dinar हदीस में आया है। और दीनार गोल्ड कॉइन को कहा जाता है, बिट कॉइन नहीं कह रहा हूँ, गोल्ड कॉइन कह रहा हूँ कि 100 gold के कॉइन देने पड़ेंगे तो जाकर के एक गाय की मूंडी मिलेगी। कितनी मेंगवारी दुनिया में हो जाने वाली है। अभी तो बहुत अच्छे हालात में हम लोग जिंदगी गुजार रहे, फिर उसके बाद फिर अच्छे हालात आएंगे दुनिया में ये याजूज माजूज के जमाने में। और इतनी खतरनाक कौम के पूरी दुनिया में घरों में घुस के सब खा जाएंगे। वो शुरुआत तो आपके यहाँ सुना ऐसी हो जाती है कभी कभी, अल्लाह आपको हिफाजत और अमान में रखे, हम हमेशा आफियत और सलामती में रखे। तो जो है वो घरों में घुसेंगे, सब खा पी जाएंगे और आखिर में वहाँ पैलेस्टाइन में पहाड़ है जिसका नाम है जबलुल खुमुर। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत में है कि याजूज माजूज पूरी दुनिया में सब खा पी जाएंगे तो जबलुल खुमुर पर चढ़ेंगे और कहेंगे सारी दुनिया में हमने सब कुछ लूट मार कर लिया, खत्म कर दिया, इंसानों को काट डाला, अब चलो आसमान वालों को भी हम मार डालें, तो पहाड़ पे चढ़कर के वो तीर छोड़ेंगे आसमान की तरफ, ताकि आसमान वालों को खत्म कर देवे। अल्लाह की भी बड़ी निराली शान है, हदीस में है कि वो लोग तीर चलाएंगे तो अल्लाह वो तीर को जब रिटर्न करेंगे तो उसके ऊपर खून लगा हुआ होगा कुदरती तौर पर, तो वो खुश हो जाएंगे कि हमने आसमान वाले खुदा को भी मार डाला, वो खुश हो जाएंगे। ये हदीस में मौजूद है। ये है याजूज माजूज की 15 कौम जो कयामत से पहले दुनिया में एक बड़ा खतरनाक वर्ल्ड वाइड अटैक करने वाली है, उसका अल्लाह ने इस आयत में तस्किरा फरमाया, हत्ता इजा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून। अब आप सोचोगे कि याजूज माजूज के अटैक से कैसे बचे, दो चार मिनट में अर्ज कर दूं, वक्त पूरा हो रहा है। याजूज माजूज से अटैक से बचने का तरीका भी हदीस ने बतला दिया है। उस जमाने में हजरत ईसा अलैहि सलाम दुनिया में आ चुके होंगे, अब तक तो आए नहीं, जैसे याजूज माजूज आएंगे तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ईमान वालों को कहेंगे कि सब पहाड़ों पे रहने चले जाओ, पहाड़ पे रहने चले जाओ। खुद हजरत ईसा अलैहि सलाम वहां अपने साथ जो ईमान वाले होंगे उनको लेकर तूर पहाड़ पर चले जाएंगे। तूर इस वक्त इजिप्त में, उस पर वो चले जाएंगे ईसा अलैहि सलाम। बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैसेज दे देंगे कि आप अपने इलाके में जहां भी पहाड़ होवे पहाड़ पे चढ़ जाओ, और पहाड़ पे जाके रहो तो याजूज माजूज के फितने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमा लेंगे। पास मरतबा किसी गांव में जाना होता है और गांव में पहाड़ होता है तो मैं कहता हूँ भाई पहाड़ ना पाए घर बनाओ, याजूज माजूज के जमाने में काम आएगा, हदीस शरीफ से साबित है, पहाड़ पे भी एकाध बना लो मकान। तो बहरहाल ये याजूज माजूज के मुतालिक अजीज मुकर्रम ने आयत पढ़ी तो मैंने सुना, कुछ बात आपको सुना दूं। अल्लाह ताला इस मजलिस को बे इंतहा कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमावे, अपनी रजा और खुशनुदी का जरिया बना देवे और अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, बहुत हार्ट से बाई हार्ट रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी तरावी सुनने का एहतमाम करो। बहुत से लोग पीछे बैठे रहते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप पर खेलते रहते हैं, और इमाम साहब जब रुकू में जाते हैं तो खड़े होकर ज्वाइंट हो जाते हैं। ये कुरान की बहुत बड़ी बेअदबी है जो रमजान की मुबारक रातों में मस्जिद में बैठ करके आज का मुसलमान कर रहा है। शायद ऐसी वजूहात हो जिसकी वजह से हम पर बुरे हालात आ रहे हैं, इसलिए मुसलमानों कुरान का एक इकराम करो, अदब करो, रिस्पेक्ट करो। इमाम साहब हर दो रकात पर अल्लाह अकबर कहे, साथ में अल्लाह अकबर कहकर नमाज में शामिल हो जाओ और ध्यान से कुरान सुनो। ये कुरान का वक्त मस्जिद में बैठ के व्हाट्सएप खेलने का नहीं है, बेअदबी करने का नहीं। ये तो काफिर लोग करते थे मक्का के, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे तो काफिर क्या करते थे, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون। ऐसे धंधे कुरान के वक्त पर मक्का के काफिर करते थे, आज अफसोस है कि वो काम मुसलमान कर रहे हैं। कुरान का अदब करो, ऐसा सिस्टम बना पूरी मस्जिद के सब लोग शुरू से तरावी में शामिल हो जाए, कुरान को ध्यान से सुने, तब जाकर के कुरान मुकम्मल होगा। और सब साथी नियत करो कि इस साल रमजान में 70,000 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर पढ़ेंगे। कितनी मर्तबा? 70,000 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी रमजान में एक कोर्स पढ़ लो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها
من جميع الاحوال والافات وتقديلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. الله اكبر الله اكبر. اللهم اغفر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر. اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.